السلام علیکم خواتین و حضرات. کچھ سنڈے سے ایک چیز پر ہماری بات چیت چل رہی ہے کہ غور و فکر. انسان غور و فکر تو کرتا ہے, اور جہاں سے بات ہماری چلی تھی وہ یہ تھی کہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. اگر ہم اسی بات کو آگے لے کے چلیں تو جب ہم اپنی ذات پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نیست سے ہست میں آئے, کس طرح سے ہم عالم ارواح سے عالم الاسباب میں آئے اور عالم الاسباب سے پھر دوبارہ عالم برزخ میں چلے جائیں گے, تو پھر ہمارا ذہن اس قوت کی طرف جاتا ہے جو دکھائی نہیں دیتی لیکن محسوس ہوتی ہے. وہ غیر مرئی قوت جس کا کہیں وجود نہیں لیکن ہر جگہ وجود ہے. تو اب اس کو کیسے پہچانا جائے؟ یہ تو اپنے آپ کو جب ہم پہچانتے ہیں, اپنے آپ کو ایگزامن کرتے ہیں, اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک ناپاک قطرے سے ایک 6 فٹ کے جوان کی صورت میں وجود میں آ گئے, تو یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک قوت ہے جو ہر جگہ موجود ہے, جو سب سے بڑھ کر ہے, سب سے طاقتور ہے. لیکن وہ قوت کیسی ہے؟ تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, ہم ان چیزوں کے ذریعے سے اس قوت کا گمان کریں کہ وہ ایسی ہوگی کہ انسان مہربان ہے, انسان میں اللہ نے معاف کر دینے کی صلاحیت رکھی ہے, انسان کو غصہ آتا ہے, انسان انتقام لیتا ہے, انسان سخی ہے, سو آن سو فورتھ. آپ ان ورچوز کو دیکھتے جائیے. تو اسی ریفرنس سے اگر ہم آگے چلیں تو یہ نہیں کہ ہمیں اس کی حد کا پتہ لگے گا, وہ تو بے حد و حساب ہے. انسان کے ساتھ اس کا کوئی موازنہ نہیں کیا جا سکتا. رب تعالیٰ کی قوتیں, رب تعالیٰ کی قدرت بے حد و حساب ہے, اور اس کو ہم انسان سے موازنے میں نہیں ڈال سکتے. لیکن ایک ریفرنس ضرور ہے کہ رب کے ورچوز ایسے ہوں گے کیونکہ اس نے ہمارے اندر اپنے ورچوز کا ایک عکس ڈالا ہے. اس طرح سے دیکھیے کہ جو کچھ ہمارے اندر ہے یہ رب تعالیٰ کے ورچوز کا ایک عکس ہے, ماسوار رحمان ہونے کے. انسان میں اس کا عکس نہیں ڈالا رب نے, رحمان صرف رب ہے. تو جب ہم اس ریفرنس کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں یہ شوق ہوگا کہ ہم رب کو مزید جانیں, رب کو مزید پہچانیں. اب جیسے میں نے جب بات شروع ہوئی تھی تو اس وقت عرض کیا تھا کہ رب کی ذات پر غور نہ کریں کبھی, وہ منع ہے, اس لیے کہ عقل انسانی اتنی کمزور ہے, اتنی ناقص ہے کہ اگر ہم نے رب کی ذات پر غور کیا تو ہم بھٹک جائیں گے. ہم رب کی صفات پر, اس کی قدرت پر اگر غور کریں گے تو ہم رب کو پہچاننے لگیں گے. تو جب ہم یہ جاننا چاہیں کہ رب کیسا ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ایک آئینے کی ضرورت پیش آئے گی کہ جس آئینے میں اس کے تصور کو ہم دیکھ سکیں, اور وہ آئینہ ہے ہمارے دل کا. اور آئینہ میں کوئی شبیہ, کوئی امیج صاف دکھائی نہیں دیتا جب تک کہ آئینہ کلی طور پر صاف نہ ہو. تو انسان اپنے دل کے آئینے پر رب का अक्स नहीं देख सकेगा, तब वक्त के अपने दिल को पूरी तरह साफ न कर ले। और दिल की सफाई के सिलसिले में यहां मैंने आपसे अर्ज किया था, नॉट दी लास्ट बट प्रीवियस वन, मैंने अर्ज किया था आपसे कि इंसान के अंदर 10 ऐसे नेगेटिव चीजें हैं कि जब तक वो न निकले इंसान का दिल साफ नहीं होता, और जब तक इंसान का दिल साफ नहीं होगा उसमें रब नहीं बसता आगे। रब पाक है, रब साफ है, रब हसीन है, रब निफासत पसंद है, वो सिर्फ वहीं रहता है जहां ऐसी नेगेटिव चीजें ना हो। तो उन 10 नेगेटिव चीजों में सबसे पहली जो चीज मैंने अर्ज की थी वो कीना था, कि जब तक के इंसानी दिल से कीना बिल्कुल ना निकल जाए उस वक्त तक रब वहां नहीं बसता। दूसरा बुगज है, तीसरा हसद है, और उसके बाद 2 ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत अजीज हैं, खासतौर पर इस खित्ते जमीन पर बसने वाले 18 करोड़ लोगों को हम बहुत चाहत और प्यार से उन्हें पालते हैं, वो है गीबत और गुस्सा। गीबत के सिलसिले में एक बार मैंने अर्ज किया था कि गीबत कितनी बुरी चीज है, उसका अंदाजा इससे लगा लें कि अपनी वाइफ से जो बंदा फेथफुल न रहे उसकी सजा संसार होना है। उसे इस्लाम में उसकी सजा यह है कि उसे जिंदा संसार कर दिया जाए। तो एक साहबी अपने दूसरे साथियों के पास तशरीफ लाए और उनके दोस्तों ने देखा उन साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर शदीद परेशानी का आलम है, और वो ऐसा लगता है कि वो साहबी अभी रो देंगे। तो दोस्तों ने पूछा कि आपको हुआ क्या है, तो इसके दर शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मुझसे ऐसा गुनाह हो गया जिसके बारे में मुझे अंदेशा यह है कि शायद मेरे तमाम नेक अमाल जाया हो गए हैं और मुझे शदीद सजा इस पर मिलेगी। तो साहबा ने कहा कि क्या हो गया, तो उन्होंने कहा कि मैंने आज अपनी वाइफ से बेवफाई कर डाली है। तो साहबा ने कहा कि शुक्र है, वरना हम ये समझे कि शायद आपने किसी की गीबत कर दी है। तो ये जिस चीज को हम बहुत अजीज रखते हैं और जो सबसे बड़ी पास टाइम हॉबी है हमारी, वो इतना बड़ा गुनाह है, इतनी बड़ी असीबत है वो। इसी तरह हम गुस्से को पालते हैं। मेरा मुशाहिदा ये है कि जो इंसान गुस्सावर है और गुस्से में वो अक्ल खो देता है, उसे अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रहता, वो खा कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो, वो रब के करीब पहुंच नहीं पाता। शायद आप में से अक्सर हजरात ये सोचेंगे कि ये पागलपन की बात है कि अल्लाह ताला गुस्सा तो हमारा है तो रब क्यों हमें अपने करीब नहीं करेगा, इसके एक मैकेनिज्म काम करता है। वो मैकेनिज्म काम ये करता है कि अगर मैं शदीद गुस्सावर इंसान हूं और गुस्से के आलम में मुझे कुछ कंट्रोल नहीं रहता अपनी जुबान पर, चाहे मैं दिल से कितना ही अच्छा इंसान क्यों नहीं, तो जब मैं गुस्से में आता हूं और अपने किसी मुसलमान भाई को जो मेरे मुंह में आता है मैं कह देता हूं, तो उस मेरे मुसलमान भाई का दिल दुखता है, खा دس منٹ کے بعد جب میرا غصہ ختم ہو تو میں اس اپنے مسلمان بھائی کو کتنا ہی کیوں نہ کمپنسیٹ کروں، لیکن اس کا دل تو دکھ گیا. اور رب کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے کسی بندے کا دل دکھا دیا جائے، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو. اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ مسلمان کا دل نہ دکھے. وہ اگر خورشیف جیسے منکر خدا کا دل بھی کسی نے دکھایا تو رب تعالیٰ اسے برداشت نہیں کرتا، اسے اپنے بندوں سے بہت پیار ہے. یہ میں روٹین کی بات نہیں کہہ رہا جو ہم ہر روز سنتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ مشاہدے کی بات ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کسی منکر خدا کا دل بھی دکھایا وہ رب کے قریب نہیں جا پائے. اس لیے فقیر لوگ، درویش لوگ سب سے زیادہ جو احتیاط کرتے تھے، آج بھی وہ اسی پہ کام کرتے ہیں کہ اپنے غصے کو ختم کر دیتے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھاتے. کسی بھی فقیر کے لیے نو کہنا سب سے مشکل کام ہے دنیا کا. وہ کسی کو نو نہیں کہہ سکتا، نہ نہیں کہہ سکتا. حالانکہ مینجمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اچھا ایگزیکٹو ہے، جو افیکٹو ایگزیکٹو ہے، وہ سب سے پہلے نو کہنا سیکھتا ہے. ایڈوائز یہ کی جاتی ہے مینجمنٹ پڑھاتے وقت کہ سب سے پہلے آپ نو کہنا سیکھیے. کہ خود گورے نے ہم کو بھی یہ بات پڑھائی تھی آج سے 46 سال پہلے کہ نو کہنا سیکھو. تو فقیر نو نہیں کہہ سکتا کسی کو. اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ اس کے اندر اخلاق کی ضرورت نہیں ہوتی یا اس کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ یہ پریکٹس کرتا ہے کہ کسی کا دل میرے ہاتھ سے نہ دکھے. تو اس خوف سے وہ انکار نہیں کرتا کسی چیز سے، کسی بھی شخص کو، کہ معلوم نہیں میرے نہ کہنے سے اس کا دل نہ دکھ جائے اور میں گرفت میں نہ آ جاؤں رب تعالیٰ کی. ایک اور چیز جو بہت عزیز ہے ہمیں، خاص طور پہ مجھے تو بہت ہی عزیز ہے، وہ ہے گفتگو کرنے کی ہرس، ہرس کلام. یہ بھی ان 10 چیزوں میں سے ہے. اگر ہم اس کو ٹیل اینڈ سے دیکھیں گے تو یہ 3rd بنے گی اس میں، پرائیورٹی آرڈر میں. ٹیل اینڈ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 3rd کہ گفتگو کرنے کی جو ہرس ہے ہمارے اندر کہ میں بات کروں دوسرا نہیں کرے. اسی طرح ہرس توام ہے، ہم کھاتے چلے جاتے ہیں. یہ مجھے اپنے کالج کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے کزن کے ایک دوست تھے روبانی صاحب، اہل زبان تھے، ان کا تعلق بریلی سے تھا. تو چونکہ فیملی میں اس وقت سب سے کم عمر میں تھا تو ڈیوٹی میری تھی کہ میں انہیں جب بھی وہ گھر پہ آ کے ٹھہریں تو لک آفٹر ان کو میں کروں، روبانی صاحب کو. اور مجھے نہیں معلوم کہ ان کو یہ گمان کیسے ہو گیا کہ میں بھی اہل زبان ہوں، حالانکہ پنجابی کتنے ہی لکھنوی انداز میں اردو بولے وہ بولتا پنجابی ہی میں ہے. اردو بھی پنجابی میں بولے گا اور انگریزی بھی پنجابی میں بولتا ہے. تو معلوم نے ان کو یہ گمان کیوں گزرا کہ میں اہل زبان ہوں. تو ایک روز انہوں نے مجھے کہا کہ چلیے سرفراز صاحب ایک جگہ چلتے ہیں، یا آئیے تشریف لے چلیے. تو ایک جگہ جہاں وہ گئے وہاں دو صاحبان کھانا کھا رہے تھے. تو روبانی صاحب بہت غور سے انہیں دیکھتے رہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے کھانے کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے، کوئی 20 منٹ گزر گئے ہیں لیکن وہ کھانا ابھی جاری ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ سرفراز صاحب، ایک پنجابی میں اور ایک اہل زبان میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک بھینس میں اور بکری میں. تو میں تھوڑا سا حیران ہوا، تو میں نے ان کو چونک کے دیکھا کہ کہنے لگے کہ جو اہل زبان ہیں وہ بکری کی طرح ہیں، جیسے بکری اگر کچھ کھا رہی ہے آپ اس کو ایک بار ہش کریں تو دوڑ جاتی ہے، کھانا چھوڑ دیتی ہے. لیکن بھینس اگر کھرلی میں منہ ڈالے ہوئے ہو تو جب تک کہ انہیں 10-20 ڈانگیں نہ مار دی جائیں وہ منہ نہیں اٹھاتی کھرلی سے. तो पंजाबी भी जब खाने पे आता है तो फिर भैंस की तरह मुंह उठाता नहीं है। तो मैंने दबी जबान में कहा कि सर मैं भी पंजाबी हूं। तो उनको झटका लगा तो कहें हैं अच्छा वाकई। मैंने कहा जी मैं तो जालंधर का पंजाबी ढग्गा हूं। तो ये जो हिरसे तुआम है ये भी उन बुरी चीजों में से एक चीज है। वो रुबानी साहब इंतकाल कर गए इसलिए बताने में मुझे कोई अंदेशा नहीं, वरना अगर वो जिंदा होते तो मेरी बात खत्म करते ही मेरा ख्याल है यहां 50% लोग उनके पास चले गए होते अब तक। उन साहब में एक बहुत जबरदस्त अल्लाह ने कोई क्वालिटी पैदा की थी। तो जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं शायद उस वक्त फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में पढ़ा करता था, तो एक रात को उन्हें मैंने खाना सर्व किया। तो बर्तन जब मैं वापस ले जा रहा था उनके कमरे में से, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सरफराज साहब आपका पूरा नाम क्या है। तो मैंने अर्ज कर दिया कि साहब सरफराज अहमद, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ। तो मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन तो दे दी, इसलिए कि तमीज और अदब का तकाजा ये था कि मैं इनकार ना करूं, दे दूं, और अगर कोई सवाल मुझे पूछना है तो इन्फॉर्मेशन देने के बाद पूछूं। तो मैंने इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करने के बाद अर्ज की, मैंने कह दिया ये आप सब क्यों मालूम करना चाहते हैं। मैं कहा नहीं ऐसी मैं सर देखना चाह रहा। नेक्स्ट डे जो ब्रेकफास्ट उनका लेके मैं गया उनके कमरे में, तो उन्होंने मुझे कोई 6 इंच 7 इंच लंबा और कोई 5 इंच चौड़ा पेपर दिया, उस पर पेंसिल से लिखा हुआ था कुछ। तो मैंने उसको पढ़ा और समहर दिया दर मैं जादू टूना तावीज धागा एस्ट्रोलॉजी पामिस्ट्री इन सब में शुरू ही से बिलीव नहीं करता। तो उन्होंने मेरी जिंदगी के वाकयात उस दिन से लेके 55 साल की उम्र तक जो रुनुमा होने थे मोटे मोटे वाकयात वो लिखे हुए थे पेंसिल से। मैंने तवज्जो से पढ़ा भी नहीं, क्या ये फोर टेलिंग सवाए रब के और किसी के बस की बात नहीं है। तो वो डाल दिया पेपर ऐसे ही। तो मेरा ख्याल है शायद 1990 में या मालूम नहीं तीन चीजें कहां से बरामद हो गई। एक बुजुर्ग हुआ करते थे यहां मियानी साहब में, आज भी उनका मजार है, उनके पास मैं गया था जब मैं क्लास 5 में पढ़ता था। तो उन्होंने मुझे एक टका दिया था, उस वक्त टका होता था 2 पैसे, वो भी 1990s में मेरे ड्रेसिंग टेबल पर पड़ा हुआ था और उस पर काई वगैरह जमी हुई, ऑक्सीडेशन हो गई थी उसकी। इसी तरह एक बुजुर्ग जो दुनिया से बहुत देर पहले जा चुके, कुछ 600 साल पहले, उन्होंने मुझे कोड़ियां आता फरमाई थी, क्योंकि उनके दौर में कोड़ियां मार्केट में बतौर कैश के चलती थी। तो 4 कोड़ियां उन्होंने आता फरमाई थी मुझे, वो कोड़ियां भी गायब हो गई थी, वो भी वहीं आ गई ड्रेसिंग टेबल पर, और ये पेपर भी। तो मैंने उस पेपर को उठा के ये देखा कि है क्या, तो देखा रुबानी साहब की तहरीर है पेंसिल की। तो मुझे खुशी हुई, हैरत भी हुई कि इतने अरसे के बाद ये पेपर कहां से निकला है, और पढ़ा भी ड्रेसिंग टेबल पर है मेरी। तो उसको उठा के मैंने पढ़ा, बड़ी एक हैरत अंगेज चीज थी कि उसमें कोई एक भी ऐसी बात नहीं थी जो हुई ना हो। और अब आप पत्थर मत मारिएगा, आखिरी जुमला सुन के मेरा, उन्होंने लिखा था कि 55 साल की उम्र में या आप पागल हो जाएंगे या कोई बड़ा हादसा पेश आएगा। तो वो 55 साल की उम्र को जब मैं पहुंचा तो हादसा ये पेश आया कि मैं कंगाल हो गया। और लोगों ने बाज़ाब्ता मुझसे कहा, जो करीबी लोग थे, कि शाह साहब आप ये अल्लाह को पुकारते रहती हैं तो बच गए, वरना आम आदमी खुदकशी कर लेता। तो वो आखिरी बात थी 55 साल की उम्र की मुझे। लेकिन वो इंतकाल कर गए, तलाश मत कीजिए, नहीं मिलेंगे वो। तो ये जो हिरसे तुआम है वहां से बात चली थी, ये रब को पसंद नहीं है, इंसान रूहानियत की राह पर नहीं चल पाएगा। इसी तरह एक और चीज है, वो है हिरसे जाह। जिस इंसान के दिल में, जिस दिल में ये ख्वाहिश हो कि लोग मेरी इज्जत करें, मेरी ताजीम में उठकर खड़े हों, वहां रब नहीं बसता। ये एक हदीस भी है कि वो शख्स जो ये चाहे कि लोग उसकी ताजीम में उठकर खड़े हों, उसे चाहिए कि अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। तो ये हिरसे जाह उन 10 आइटम्स में से लास्ट है। तो अगर रब को हम बसाना चाहते हैं अपने दिल में, तो 10 की 10 चीजों से छुटकारा पाना पड़ेगा हमें, उसके बगैर रब नहीं मिलेगा। लोग मराकबे की बात करते हैं, मराकबे में भी कल्ब, दिल, जो भी कहिए उसे आप, ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है। क्योंकि जब हम मराकबे में जाते हैं तो उसका तरीका यह है कि आप जब मराकबे में जाना चाहें तो किसी ऐसी जगह बैठ जाइए जहां शोर ना हो और तरह हो आप, और उस जगह भी वो मकाम ढूंढिए जहां आप रोज बैठते हैं। क्योंकि इंसानी फितरत में है कि इंसान अपने फैमिलियर एनवायरनमेंट में रिलैक्स कर जाता है, उसके एहसाब पर तनाव नहीं होता फैमिलियर एनवायरनमेंट में। तो जब आप ऐसी जगह बैठेंगे जहां आप रोज बैठते हैं तो आपके एहसाब पर तनाव नहीं होगा। ये याद रखिए कि अगर एहसाब पर तनाव हुआ, आप टेंस हुए, तो मराकबा नहीं होता है। तो वहां बैठ जाइए, और उसका पोस्चर डिपेंड करता है कि किसी इंडिविजुअल के लिए कौन सा पोस्चर ज्यादा कंफर्टेबल है बैठने के लिए। कुछ क्रॉस लेग बैठते हैं वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, कुछ अत्ताहयात में जैसे बैठते हैं, उस पोजीशन में बैठते हैं, उनके लिए वो बहुत कंफर्टेबल होता है। सबसे ज्यादा कंफर्टेबल पोस्चर ले लें और आंखें बंद करके अपना सर इतना झुकाइए कि चिन टच कर जाए सीने को, और तसव्वुर में आप तवज्जो बांधिए अपने दिल पर कि आप अपने दिल को देख रहे हैं। तो शुरू में तो 2-4 दिन 5 दिन अंधेरा होगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मायूस ना होइए, उस पर प्रैक्टिस जारी रखिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी की झलक दिखाई देगी, और वो फिर बढ़ता चला जाएगा, हत्ता कि आपको अपना दिल दिखाई देने लगेगा। जब इंसान अपने दिल को देखता है, बशर्ते कि मुझ जैसे स्याहकार का दिल ना हो, आप जैसे नेक लोगों का दिल आपको पिंक, गहरा पिंक रंग का दिखाई देता है और चमक रहा होता है बहुत शिद्दत के साथ, बहुत चमक होती है उस वक्त, तो उस पर नजर जमाइए और तसव्वुर कीजिए कि मेरे दिल पर अल्लाह का नाम लिखा है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता, इसका मतलब ये नहीं कि 10-15 दिन में हो जाएगा, इट माइट टेक फ्यू मंथ्स, वो विजिबल होने लगेगा अल्लाह का नाम। तो जब अल्लाह का नाम आपके दिल पर वाजे हो जाए, और जब भी आप मराकबे में बैठें तो इन ए मिनट और सो वो लफ्ज आपकी आंखों के सामने आ जाए दिल पर लिखा हुआ, तो समझ लीजिए अब मराकबा आपका होता है। तो जब हम मराकबे में, सॉरी हमसे मुराद नहीं, जब आप मराकबे में जाते हैं, क्योंकि मैंने मराकबा कभी किया ही नहीं है, मुझे नहीं मालूम मराकबा होता क्या है, ये तो पढ़ी हुई बातें आपको बताया जा रहा हूं। जब हम अपने दिल पर नजर डालते हैं और वहां हर्फ अल्लाह नजर आता है, तो इसका मतलब ये है कि फॉर दैट वेरी मोमेंट हम दुनिया से कट गए हैं। अब दुनियावी कारोबार, दुनियावी परेशानियां और दुनियावी कसाफतें उनसे हम हट के कट के आ गए हैं। तो अगर दिल में ये कसाफतें होंगी जो मैंने अर्ज की हैं, तो दिल फिर उतना साफ दिखाई नहीं देता, और जब दिल साफ नहीं होगा तो वहां रब नहीं आएगा। गर्चे बात जो मैं अगली कहना चाह रहा हूं वो असल मौजू से हटी हुई है, लेकिन इन द एंड इसी से जाके मिल जाएगी वो बात। वो ये है कि जब हम पर कोई मुश्किल आती है, हम अपने बच्चे को तकलीफ में किसी को देखते हैं, या अपने बच्चे की किसी जरूरत पर नजर पड़ती है हमारी, या कोई और दुनियावी काम हमारा अटकता है, तो हम ऐसे रवैये में चले जाते हैं जो अहल अल्लाह का रवैया नहीं है, जो अल्लाह के चाहने वालों का रवैया नहीं है। वो ये है कि हम अपनी तकलीफ जाके दूसरों से बयान करते हैं, हम किसी दुआ करने वाले की तलाश में जाते हैं और उस दुआ करने वाले इंसान के सामने जाके अपनी वो तकलीफ बयान करते हैं। अगर इसे आप गहरी नजर से देखेंगे तो ये दर हकीकत हम अपने रब का शिकवा बयान कर रहे होते हैं, ये अपने रब की शिकायत हो रही होती है। और इसमें लतीफा ये है कि अगर कोई मुझे ऐसे मौके पर कहे कि सरफराज साहब ये आप रब का शिकवा बयान कर रहे हैं, तो मेरी जुबान से एकदम निकलेगा कि नहीं, मैं तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूं। ये एक और गलती कर ली कि मैंने अगर शुक्र अदा किया भी था तो उसको भी कुएं में डाल दिया, कि मेरे जहन में ये अटकी हुई है बात कि मैं अपने रब का बड़ा शुक्रगुजार बंदा हूं, ये तो कब्र में चली गई बात। तो जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो गई। जब हम अपनी तकलीफ पर हाय हाय करते हैं तो हम इसको दो तरीके से देख सकते हैं, देयर आर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट। एक एंगल तो ये है कि जो खुशियां थीं, जो अच्छे दिन थे, अच्छा वक्त था, वो मैंने गुजारा है अपनी जिंदगी का, तो ये तकलीफ कोई दूसरा उठाएगा मेरी जगह, ये भी मुझे उठानी है। अगर मैं एंजॉय करता हूं अच्छे टाइम को, तो इस बुरे टाइम को मैं ही भुगतूंगा, कोई और नहीं। एक दूसरा एंगल है कि इंसान रब से शर्माने लगता है कि जिस रब ने मुझे इतना लंबा अरसा सुख में रखा, बिन मांगे हर चीज अता कर दी, अगर उसकी तरफ से चार दिन की तकलीफ आई है तो फिर हाय हाय क्या करूं मैं। तो इस हाल में भी रब का शुक्र अदा होना चाहिए। एक तीसरा एंगल है इसका कि हम सूरह यासीन में पढ़ते हैं कि रब तआला ने हर चीज जोड़ों में पैदा की है, जोड़े उसके पैदा किए हैं। तो हमारी जिंदगी भी जोड़ों ही से रकम है कि हमारी जिंदगी में अगर सुख है तो दुख भी है, खुशहाली है तो तंगदस्ती भी है, तंदुरुस्ती है तो बीमारी भी है, कामयाबी है तो नाकामी भी है, इज्जत है तो जिल्लत भी है उसमें। ये सब चीजें जिंदगी का हिस्सा हैं, क्योंकि रब ने हर चीज पैदा ही जोड़ों में की है, जोड़े की सूरत में पैदा हुई है। तो ये जिंदगी जो हमारी रब ने हमें अता फरमाई है वो रकम है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चीजों से इकट्ठी। तो हम ये क्या करते हैं कि खुद या किसी और आदमी को दुआ के लिए कहते हैं कि दुआ कीजिए कि मेरी जिंदगी में सुखी सुख हो जाए, आराम ही आराम हो जाए, तो हम उस जिंदगी को आधी काट के फेंक देना चाहते हैं। सिर्फ उसका पॉजिटिव हिस्सा अपने पास रखना चाहते हैं, तो क्या ये नेचर के साथ फिडलिंग नहीं है? और जब हम किसी शख्स के पास दुआ के लिए जाके रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि यह इंसान की तौहीन है कि वो किसी अपने ही जैसे मोहताज बंदे के सामने जाके गिड़गिड़ाए कि मुझे इस मुश्किल से निकाल लो। तो हम अपनी तौहीन क्यों करें किसी दूसरे शख्स के पास जाके अपने रब के शिकवे बयान करके? तो जब हम इससे मना हो जाते हैं, और ये हर मुश्किल में ये ख्याल आता है कि मेरे रब ने इतना अरसा मुझे तंदुरुस्त रखा, आज अगर चार दिन की बीमारी आ गई तो मैं हाय हाय क्यों करूं? तो जैसे मैं तंदुरुस्ती में अल्लाह का शुक्र अदा करता था, इसी तरह मैं आज भी शुक्र अदा कर दूं कि या बारी ताला तू बड़ा रहीम और करीम है, तूने मुझे सारी उम्र तंदुरुस्त रखा, ये जो चार दिन की बीमारी आई है मुझे यकीन है कि तू अपनी रहमत के सदके इसे दूर फरमा देगा सूनर और लेटर, क्योंकि तेरी रहमत से मुझे यही उम्मीद है। मुसीबत में भी, क्योंकि एक बात याद रखिए कि रब से हम जैसे गुमान करते हैं रब वैसा ही नजर आता है, तो रब से अच्छे गुमान रखिए, वो अच्छा ही करेगा, ये एक बड़ी बुनियादी चीज है। तो मुश्किल वक्त में भी जब हम अपने रब से अच्छे गुमान रखते हैं और उससे ये कहते हैं कि या बारी ताला तो बहुत रहीम और करीम है, मैं जानता हूं और ये मेरा ईमान है कि तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिला देगा क्योंकि तेरी सुन्नत यही है, तो रब उस मुसीबत से निजात दिला देता है। तो जब हम ये रवैया रखते हैं तो हम शुक्रगुजार बंदों में चले जाते हैं, और रब को शुक्रगुजार बंदे बहुत पसंद हैं। तो उससे दिल या कल्ब हमारा और रोशन होता है, रब के साथ प्यार और बढ़ता है, और जो जो रब के साथ प्यार बढ़ेगा, इंसान जिससे इश्क करता है उसकी नाराजगी से बहुत डरता है, सजा का खौफ नहीं होता, उसके नाराज हो जाने का खौफ होता है कि मुझसे नाराज ना हो जाए, मुंह ना मोड़ ले मुझसे। तो जब हम ये रवैये रखते हैं तो रब के साथ हम रफ्ता रफ्ता इश्क में मुब्तला होने लगते हैं, और जब उसके इश्क में मुब्तला हो जाएं तो हम उसके छोटे से छोटे हुक्म की सता भी नहीं करते इस खौफ से कि मेरा महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए। तो अल्लाह के इताअत गुजार बंदों में चले गए हम, बंदगी के उस आला मयार को चले जाते हैं जिस पर एक मोमिन फाइज होता है। किसी साहब ने एक सवाल पूछा है, सोशल हवाले से एक सवाल है, लोग किसी में एक नुक्स देखकर उसे पूरी पर्सनालिटी पर अप्लाई कर देते हैं जिसे हम ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं, ये काम मुझ जैसे कम इल्म और कम अकल लोग करते हैं, फकीरों और दरवेशों का कहना यह है कि किसी शख्स से नफरत न करो क्योंकि वो अच्छा है, हां उसने कोई एक बुरी आदत पिक कर ली है। तो दरवेश और फकीर लोग 1400 साल पहले भी इसी पर कारबंद थे, जो कायदाबाद में आज से 100 साल पहले अंग्रेज ने डिवाइस करके हम तक पहुंचा दिया, ये फकीर लोग 1400 साल से इस पर अमल पैरा हैं। सुन्नत के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी यही है कि किसी शख्स से नफरत नहीं करो, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो यह है, और इस पे फकीर लोग बड़ी शिद्दत से अमल करते हैं कि बुरे लोगों को ज्यादा सीने से लगाते हैं। ये गलत रवैया है। जिस जमाने में यहां गुफ्तगू हो रही थी गवाही पर, तो इस मौजू पर काफी तफसील से बात की थी हमने कि अगर हम सिर्फ अपनी गवाही दुरुस्त कर लें तो हमारे 80% مسائل ختم ہو جائیں گے قومی سطح پر. اسی پر ایک صاحب نے ڈاکٹر اے آر خالد انہوں نے نوائے وقت میں میرے حوالے سے یہ مضمون لکھ دیا تھا کہ اصلاح احوال کا یک نکاتی منشور گواہی. تو اگر ہم اپنی گواہی کو درست کر لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. پھر ہم کسی ایک برائی کی وجہ سے اس شخص کی تمام اچھائیوں کو اس کی تمام پازیٹو سائٹس کو اس طرح سے کنڈیم نہیں کریں گے جیسے اب ہم کر دیتے ہیں. یہ نہیں کیا جانا چاہیے. اول تو کسی کمزوری کا خامی کا گناہ کا ذکر کیا نہیں جانا چاہیے قطعی طور پر. لیکن اگر وہ ناگزیر ہو جائے فار سم ریزن تو پھر ان لفظوں میں کہہ دیا جائے کہ وہ بہت اچھا انسان ہے, صرف اس بیچارے سے کوتاہی ہو گئی کہ اس نے یہ ایک عادت پک کر لی ہے. ایک زمانے میں, اب تو کوئی عہد قدیم کی بات لگتی ہے, صدیوں پہلے کی, کہ جب میں نوجوان تھا تو ایک صاحب دل اور صاحب علم آدمی جو اس وقت ریٹائرمنٹ کی ایج کو پہنچے تھے, شادی وغیرہ انہوں نے کی نہیں تھی, ان سے ملاقات ہوئی. وہ انگریزی کے پروفیسر تھے, مرے کالج سیالکوٹ میں انگریزی پڑھایا کرتے تھے. تو وہ مہربان ہو گئے بہت مجھ پہ. تو ایک دن وہ فرمانے لگے کہ جناب مولانا اشرف علی تھانوی ہمارے گھر بہت آیا کرتے تھے, ان کے والد کے پاس ان کا آنا جانا تھا کافی, تو جب کبھی بھی وہ سیالکوٹ آئے تو انہی کے گھر پہ ٹھہرتے تھے. تو یہ صاحب ان دنوں کلاس 4-5 میں پڑھتے تھے. تو ایک بار جناب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ان کے گھر پر ٹھہرے ہوئے تھے. یہ صبح کے وقت گئے تو مولانا سے انہوں نے سوال پوچھا کہ حضرت, ایک کافر اور ایک مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو ان کے والد نے انہیں ڈانٹا کہ سوال نہیں پوچھتے, یہ گستاخی ہے. تو مولانا نے فوراً منع کیا کہ نہیں بچہ ہے, اسے پوچھنے دیں آپ. تو چونکہ مولانا بہت بڑے صاحب علم تھے, تو صاحب علم کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مخاطب کے ذہنی سطح کے مطابق جواب دیتا ہے کہ سنت الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ اپنے مخاطب کے ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا جائے. تو مولانا نے کہا کہ بیٹا, کافر اور مسلمان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے اور ایک برے انسان میں. جب کوئی برا آدمی کسی اچھے انسان کو کوئی نیکی کا کام کرتے دیکھتا ہے تو برا آدمی یہ کہتا ہے کہ ضرور اس کا کوئی ذاتی مفاد ہے اس نیکی کے پیچھے جو یہ نیکی کر رہا ہے. لیکن جب وہ نیک آدمی کسی برے آدمی کو کوئی گناہ کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ بیچارے سے غلطی ہو گئی, بس اتنا ہی فرق ہے. تو یہ ہماری سوشل لائف میں, جہاں اور بہت سی چیزیں ایسی آ گئی ہیں جنہوں نے ہمارے سوشل سٹرکچر کا حلیہ بگاڑ دیا ہے, وہاں ایک یہ بھی ہے کہ ہم کسی انسان کی ایک کوتاہی کو پکڑتے ہیں اور اس کی پوری پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. مسلمان یہ کام نہیں کرتا, وہ پردے ڈال دیتا ہے. دوسرا سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب ہم کسی شخص کو اس کی اچھی فطرت کی وجہ سے پسند کرنے لگتے ہیں تو اس پسندیدگی کی تھرڈ ڈگری محبت ہے, پیار ہے. کہ وہ لائکنگ ڈیولپ ہو جائے گی, جو تو اس لائکنگ کے بعد اگلی سٹیج آئے گی انفیچویشن کی, اور اس سے اگلی سٹیج آئے گی پیار کرنے کی, محبت کرنے کی. گرچہ یہ جو لفظ ابھی میں نے بولا کہ اچھی فطرت, یہ بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. और बड़े ब्रॉड मायनों में यूज होती है। मुझ जैसे इंसान को दूसरे की वैसी ही फितरत अच्छी लगेगी जैसी मेरी अपनी है। अगर मुझे कोई नेक आदमी नजर आ जाएगा तो मैं सुदूर भागूंगा, उसके लिए कभी मेरे दिल में लाइकिंग डेवलप नहीं होगी। तो ये रिलेटिव टर्म है अच्छी, वो डिपेंड करता है कि देखने वाला इंसान खुद कैसा है। इन्हीं साहब का, जिनका मैंने सियालकोट के प्रोफेसर जिनका जिक्र किया, इनके बारे में यहां सुपीरियर साइंस कॉलेज की केमिस्ट्री के एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो उनसे मिलना चाहते थे और उन्हें वक्त नहीं मिलता था इनसे। तो उन्हें किसी ने बता दिया कि मैं शिराजी साहब के बहुत करीब हूं और लाहौर में जब वो तशरीफ लाते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती है और मेरी एक्सेस है वहां तक, फ्री एक्सेस। तो तुफैल कुरैशी साहब ने मुझसे फरमाया कि मेरी मुलाकात करा दें शिराजी साहब से। तो मुझे ये एहतराम था कि वो प्रोफेसर हैं और उस्ताद को इनकार करना जरा दुश्वार काम है। मैंने शिराजी साहब से कहा कि टाइम दे दीजिए, ठीक है ले आओ उन्हें। तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग लाहौर आए हुए थे, यहां ब्रेकफास्ट पर उन्हें ले गया, मिले, बड़े खुश हुए। फिर वो उनकी रट शुरू हो गई, मुझे दोबारा मिलना है, दोबारा मिलना है। तो शिराजी साहब से मैं जब वो लाहौर आए दोबारा अर्ज किया कि वो मिलना चाहते हैं आपसे, टाइम दे दीजिए। तो उनके चेहरे पर कुछ नागवारी के असरात थे, तो कहने लगे ठीक है ले आओ। वो मैं उनके तासुरात देख चुका था कि नागवारी है। तो जब मैं तुफैल कुरैशी साहब को दोबारा उनके पास लेके गया तो मैंने उनसे कहा कि शिराजी साहब, असल में इन्हें बड़ी ख्वाहिश थी तुफैल कुरैशी साहब को कि वो आपसे मिलें, क्योंकि पहली मुलाकात में ये आपसे बहुत मुतासिर हुए हैं और इनके कहने के मुताबिक इनका दिल बार बार ये चाहता है कि वो आपसे आके मिलें। तो शिराजी साहब ने कहा कि सैयदजादे, ये जो कुछ कुरैशी साहब ने मेरे बारे में तुम्हें कहा है, ये दरहकीकत वो अपनी जात के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि जब कोई शख्स दूसरे से मिलता है तो उसे अपनी जात का अक्स उस इंसान में दिखाई देता है, जैसे आईने में हमें अपना इमेज दिखाई देता है। तो देखने वाला या मिलने वाला इंसान जैसा खुद होता है, जिससे वो मिल रहा है उसको वो वैसा ही लगता है। तो कुरैशी साहब खुद चूंकि बहुत नेक और भले आदमी हैं, तो इन्हें अपनी उस नेकी और उस अच्छाई का अक्स मेरे अंदर दिखाई दिया, जिससे ये धोखा खा गए कि मैं अच्छा हूं। तो ये अच्छा जो लफ्ज है ये रिलेटिव टर्म है बहुत। मुझे एहसास है कि आप लोग बहुत बोर हो रहे हैं, इसलिए पेशते इसके कि आप कुछ दो चार फिक्रे उछाल दें मुझ पर, तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूं इंशाल्लाह अगली इतवार बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होती है, फिर इसी मौजू पर बात करेंगे। आज बहुत से सवाल लोगों के रह गए, नेक्स्ट संडे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इन सवालों के जवाब दे पाऊं। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।